चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया इवल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही व मन सन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ी व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बिल आलमीन। ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله। اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا إله إلا الله پر ثابت قدم رکھیے آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ارادہ انشاءاللہ ان 8 دنوں میں سورۃ الملک کو کور کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے انشاءاللہ تو مکمل بھی ہو جائے گی، اور جس مقصد سے ہم نے سورہ ملک کو سلیکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد بھی ہمارا پورا کروائیں گے۔ الحمدللہ آپ اور میں جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، ہم میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی ایسا ہوگا جو پہلی مرتبہ قرآن سن رہا ہے۔ ہم لوگ کافی عرصے سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کافی عرصے سے قرآن کو سن رہے ہیں۔ قرآن کی بات کو سمجھنا آپ کے اور میرے لیے ریلیٹیبل ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو انشاءاللہ جتنی باتیں ہم یہاں کریں گے اس سورت کے حوالے سے، اس میں سے بہت سی آپ کے لیے ریمائنڈر ہوں گی، بہت سی انشاءاللہ آپ کے ایمان کو پختہ کریں گی، اور بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کے ایمان میں مزید اضافہ کریں گی۔ ہم اپنے آس پاس بہت سی کتابیں اور بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اسکالر نے اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی تھی کہ میں اپنے آس پاس جتنی چیزیں بھی دیکھتا ہوں، جتنے حالات اور واقعات کو آبزرو کرتا ہوں، مجھے اس میں اللہ کی ڈیوائن ول مینیفیسٹ ہوتی ہوئی ملتی ہے۔ چاہے آپ اس وقت کرسی پر بیٹھی ہیں یا آپ اس وقت زمین پر بیٹھی ہیں، آپ کو بھی اپنے آس پاس بہت سی آیات نظر آ رہی ہیں۔ آپ اپنے گھر جانے کے لیے باہر نکلیں گی تو آپ کو جو باہر کائنات، باہر جو درخت، باہر جو راک، باہر جو گھر نظر آئیں گے، آپ کو ان کے اندر بھی مختلف اللہ ہی کی ڈیوائن ول کے مینیفیسٹیشنز ملیں گے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جو اللہ کی سائنٹیفائڈ کی ہوئی چیزوں کی حرمت کو سمجھ جاتا ہے یعنی جو انسان اللہ کی سائنٹیفائڈ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہر چیز خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ قرآن اس کی زندگی میں کھلے، قرآن کھلنے سے پہلے ہی اس کے لیے بہت سی چیزیں خیر کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کرنا ہی قرآن کے سامنے بیٹھنے کا، ہمارا ارادہ ہی کرنا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا، یہی ہمارے لیے خیر کے دروازے کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان اسکالر نے اپنی کتاب میں یہی بات مینشن کی تھی کہ جب آپ اللہ کی سائنٹیفائڈ چیزوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، اللہ ہر چیز کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کی سائنٹیفائڈ چیزوں میں سب سے زیادہ سائنٹیفائڈ چیز جس کو ہم کانسٹنٹلی آبزرو کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوقات ہیں جنہوں جو اللہ نے ہمارے آس پاس رکھی ہیں۔ تو جب آپ قرآن کی آیات کے آو میں آتے ہیں، جب آپ قرآن کی آیات کو ایک امیزنگ وے میں سمجھتے ہیں، جب آپ کو قرآن کی آیات مارول محسوس ہوتی ہیں، وہاں آپ کو اس سب سے پہلے آپ کو اللہ کی مخلوقات بھی ایک آو کا شکار کرتی ہیں، آپ کو امیز کرتی ہیں، آپ کو رب کے مارول دکھاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ میں جب بھی اس گھر میں آتی ہوں، میرے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اپنے اندر کتنے معجزے، کتنے اللہ کے پیدا کیے ہوئے مختلف ایموشنز، اور کتنے اپنے اندر مارول رکھتی ہے۔ آپ اس گھر کی ہوس سے لے کر ایک دوسرے تک کو دیکھ لیں، ہمیشہ اس گھر میں میں نے خاص محبت محسوس کی ہے، اور ہر رمضان میں نے اللہ کی خاص برکت دیکھی ہے۔ یقیناً اس میں نہ آپ کا اور میرا کوئی انٹینشن نہ ہوتا ہے کوئی خاص، نہ آپ اور میں خاص ایفرٹ کرتے ہیں، جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے۔ میرا ہمیشہ ایمان اس بات سے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان اپنے گھر کو اس ارادے سے کھولتا ہے، اللہ اس کی نیت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ان کی نیت کو خالص بھی رکھے، اپنی حفاظت میں بھی رکھے، اور اللہ اس کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے۔ ہر چیز آپ کی اور میرے لیے آیت ہے، ہر چیز میں اللہ کی ڈیوائن ول مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ صرف مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس ریئلائزیشن کے اوپر لے کر آنا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ یہاں بہت سی ایسی مائیں بیٹھی ہوں گی جن کے بچے ان کے ساتھ اسی کلاس میں یا کسی نہ کسی کلاس کا حصہ بنتے ہیں، यहाँ बहुत सी माएं ऐसी भी हो सकती हैं या जो माएं इसको सुनेंगी, से कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप पर आवाज बहुत दूर तक जाती है, ऐसी माएं भी हैं जो खुद तो कुरान की एक अहमियत को समझ गई हैं लेकिन अभी औलादें उस अहमियत को समझने की तरफ नहीं आईं। माँ बाप औलाद के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको दीन की बात समझ आनी शुरू हो जाए। ऐसी सूरत हाल में आपके लिए कुरान की क्लास का सुना हुआ एक एक जुमला आपको अपने बच्चों की तरबियत के लिए बहुत फायदा देता है। देखें, हम बच्चों से उनके लेवल पर आकर बात करते हैं तो आपके लिए कुरान एक जिंदा किताब वाकई बन जाती है। अभी हम बात कर रहे थे कि अल्लाह की बनाई हुई हर शय में अल्लाह की डिवाइन विल मैनिफेस्ट होती है। हम इंसान हैं और हम ये अपने आसपास बहुत आसानी से ऑब्जर्व करते हैं। कोई इंसान कोई बहुत अनोखा काम करता है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, तो हम देखते हैं कि एक कल्चर जो हमारे यहाँ दुनियावी लिहाज से वेस्टर्न कल्चर से प्रमोट हुआ, जब कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है तो लोग उसको ओवेशन देते हैं, लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, उनके दिल में उनकी उस काम की अहमियत आती है तो फौरन क्लैप करते हैं, उनकी बात सुनकर उनको लगता है कि बहुत ही क्या शानदार बात की है, तो एक ओवेशन उनके अंदर से निकलती है और अपने दिल की उस मैनिफेस्टेशन को वो क्लैपिंग से या ओवेशन से शो करते हैं। कोई हम यूजुअली देखते हैं, इट्स नॉट अ रिलेटेबल थिंग कुरान की क्लास के साथ, लेकिन क्योंकि हम इस दुनिया का हिस्सा हैं जहां हमें चीजें अपने आसपास उसी तरह इमेजिन करनी है जिसमें हम इस्लाह भी कर सकें और सीख भी सकें। बेथुवन का म्यूजिक कोई चलाता है तो पूरी दुनिया के अंदर उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है कि कितना अच्छा ऑर्केस्ट्रा प्ले किया है, कितनी अच्छी तरह से मैनिफेस्ट किया है किसी स्किल को। और आप और मैं इंसान होते हुए मुसलमान हैं तो फिर तो हमें डबल परेशान होना चाहिए। मुसलमान होते हुए हम मैसिव कायनात को देखते हैं, हम अपने सर पर आसमान की कैनोपी को देखते हैं, हम अपने आसपास दरख्त और जानवर देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानवर देखते हैं। जानवरों में हाथी को देखें तो कितना वेट कैरी कर लेता है। हम अपने आसपास फूलों को ऑब्जर्व करते हैं, बास फूल ऐसे हैं जो फूल सूरज की मूवमेंट के साथ सूरज के साथ साथ मूव करते हैं। आप अगर हाथी को भी छोड़ दें, अगर आप सिर्फ चींटी को देखें तो चींटी अपने वजन से कई गुना ज्यादा वेट कैरी करती है। आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, एक इतनी सी चींटी होती है उसको वो इतना बड़ा आपको जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर दिखाते हैं कि अपने साइज का 10 times बड़ा पत्ता, पत्ते का छोटा सा टुकड़ा वो अपने सर पर लेकर जा रही होती है। ये अल्लाह की मखलूकात हैं जो मेरे और आसपास हैं। ये चंद चीजें जो मैंने आपके सामने मैनिफेस्ट की हैं इस तरह से। इसके अलावा और जितनी चीजें अल्लाह की कायनात में मैनिफेस्ट करती हैं, हम इंसानों को उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी खूबी के ऊपर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और हम रब की कायनात को देखकर उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन में नमाज के अंदर अल्लाहू अकबर कहते हुए एहसास भी नहीं करते कि हम किसके सामने खड़े हैं। रब की स्टैंडिंग ओवेशन ये है कि आप जब नमाज में खड़े हों, पहली बात तो ये कि मुसलमान हो और जिसको मालूम है कि उसके लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है, अपने आसपास कायनात को देखता है और इन्फर करता है और नमाज के लिए खड़ा नहीं होता, अपने जैसे कमजोर इंसानों को स्टैंडिंग ओवेशन दे सकता है, रब जैसी हस्ती को स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए कायनात जैसे मालिक को जिसने पूरी कायनात को स्टेबल रखा हुआ है उसकी तारीफ में उसकी प्रेज में अल्लाहू अकबर कहकर नमाज की मैनिफेस्टेशन पर नहीं आता। तो ये वो सारे मामलात हैं जो मुझे और आपको बार बार कुरान के सामने बिठाते हैं ताकि आप और मैं भी इस कैटेगरी का हिस्सा ना बने और आप और मैं अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत को इनग्रेंट करें और अपनी औलादों के अंदर इस मोहब्बत को ला सकें। मकसद कुरान की क्लास के अंदर आने का यही है। इस रमजान भी हम जो कुरान के साए में बैठना चाह रहे हैं उसका मकसद एक ही है कि हम अल्लाह और अल्लाह के कलाम के साथ, इस रमजान में भी हमारा मकसद यही है कि हम इन 8 दिनों के अंदर अल्लाह से अपनी मोहब्बत को री इस्टेब्लिश करेंगे। हमें है अल्लाह से मोहब्बत, हमें है अल्लाह के कलाम से मोहब्बत, हमें है इस्लाम से मोहब्बत, लेकिन हम जिस दुनिया का हिस्सा हैं उस दुनिया में हमारे आसपास बहुत बहुत से कभी डार्क साइड्स हैं, कभी आजमाइशें हैं, कभी फितने हैं, कभी ख्वाहिशात हैं और कभी हमारे अपने रिश्तेदार हैं जो हमें दुनिया की दूसरी तरफ ड्रैग करते हैं। इसीलिए हम बार बार कुरान के सामने आकर बैठते हैं ताकि कुरान आपकी और मेरी रूह की ग़िज़ा बने, ताकि कुरान मुझे और आपको सोचने समझने का मौका दे। तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम दोबारा से कुरान से अपने ईमान को बढ़ाएं और अपने कॉन्फिडेंस को नए होराइजन्स दें। एक नई अटैचमेंट के साथ इंशाल्लाह हम इस रमजान अपने बाकी 11 महीने का आगाज करें। कुछ ऐसा ईमान हम सबके अंदर आ जाए कि इस रमजान से हमारी नेकी करने का टारगेट जो है वो अगले रमजान तक कॉन्स्टेंटली हायर परसेंटेज पर रहे, हम अपने नेकियों को आगे बढ़ाते रहें। देखिए, कुरान लॉजिकल किताब जरूर है, कुरान साइंटिफिकली भी बहुत से इंसानों को जो है वो सेटिस्फाई करती है, कुरान किसी इंटेलेक्चुअल को भी बहुत सेटिस्फाई कर सकती है। हाँ, कुरान में बहुत सी हिकमतें पोशीदा हैं, बहुत सी इंटेलेक्चुअल विजडम मौजूद हैं, लेकिन इन सब के ऊपर हकीकत यह है कि कुरान वो किताब है जिससे मुसलमान को मोहब्बत होती है। आप देखें, आज भी आपको ऐसे मुसलमान मिलते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि अगर कुरान रखा हुआ है तो आप इसके ऊपर अपनी पेंसिल भी नहीं रखें, वो कहते हैं कुरान के ऊपर कुछ नहीं रखें। हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन में ऐसे स्कॉलर्स आते हैं कि जिनके लिए आता है कि वो अगर उनके हाथ में 4 किताबें होती थीं या लेट से 2 किताबें भी होती थीं तो वो हमेशा कुरान को टॉप पर रखते थे। इतना एहसास, इतना ख्याल, इतनी मोहब्बत, इतनी अटैचमेंट इस किताब से होती थी। तो हमें भी एक बैलेंस एटीट्यूड के साथ रहना है। हमसे पहले की जनरेशन ऐसी थी कि कुरान को अब इतने अदब और इतने प्रोटोकॉल के साथ इतने जुजदान में सजा के और इतने स्पेशल कपड़े के अंदर रखना है कि उस कपड़े के अलावा रखेंगे तो शायद उसकी इंसल्ट हो जाएगी। एक वो एक्सट्रीम थी, और एक एक्सट्रीम हमारी अब ये आ गई है कि हम कुरान को अपने ही सजदे की जगह पर या पैरों की जगह पर रख देते हैं और हमें बॉदर नहीं करता है कि ये कलाम कोई आम कलाम नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कोई आम किताब नहीं है, ये आसमानों से आई हुई किताब में अल्लाह का कलाम है। हाँ, पेपर दुनिया का है, हाँ बाइंडिंग दुनिया की है, लेकिन जो कलाम लिखा हुआ है वो कलाम वही है जो अल्लाह ने 7वें आसमान से लौहे महफूज से उतारा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर। और हमारा ये भी ईमान है कि ये अल्फाज एज इट इज हम तक ट्रांसफर हुए हैं बगैर किसी तब्दीली के। तो अपने दिल में कुरान की जहां आपको ऑ और अमेजमेंट और मार्वल लेकर आना है, जहां आपको इसके साइंटिफिक फैक्ट से फायदा उठाना है, जहां आपको इसके इंटेलेक्चुअल विजडम से फायदा उठाना है, वहां आपने सबसे पहले अपने दिल में इसका एहतराम और इसकी मोहब्बत को रखना है, ताकि हमारे दिल में जब ये मोहब्बत आए तो मोहब्बत के साथ फिर इंसान इस किताब को जब भी पकड़ता है इससे फायदा उठाता है। मोहब्बत के साथ आप इस किताब को जब भी पकड़ेंगी, आप इसको ऐसे पकड़ेंगी कि इसमें आपको अपने फायदे की चीजें मिलेंगी। मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, जस्ट अ कहानी, रियलिटी इसमें कितनी है मुझे नहीं मालूम है। इमाम कुरशहरी की किताब में मैंने पढ़ी थी, इमाम कुरशहरी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी इबादत की जगह पर बैठे हुए थे, मतलब नमाज नहीं पढ़ रहे थे, इबादत की जगह पर बैठे हुए थे। आपको मालूम है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो किंगडम दी थी जो अल्लाह ने किसी को नहीं दी, और उनकी दुआ भी थी कि अल्लाह मुझे वो सल्तनत अता कर जो ना मेरे पहले किसी को दी गई हो और जो ना मेरे बाद किसी को दी जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बातें समझ सकते थे, जानवरों की बातें समझ सकते थे, तमाम दुनिया की मखलूकात में जो अल्लाह ताला ने जिसका उनको इल्म देना चाहा वो उसकी उनकी बोली और उनकी जुबान समझते थे। तो ये अपनी इबादत की जगह पर एक मरतबा बैठे हुए थे, वहां पर दो चिड़ियां बैठी हुई थी, दो परिंदे, चिड़ियां समझ लें, वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक थी चिड़िया और एक था चिड़ा। अब पता नहीं चिड़ा होता है कि नहीं होता, वो चिड़चिड़ा होता है कि नहीं होता है। बहरहाल, इमाम कुरशहरी लिखते हैं कि एक चिड़िया का कपल बैठा हुआ था, सही, एक शी चिड़िया एक ही चिड़िया। तो जो मेल चिड़िया थी उसने अपनी शी चिड़िया से कहा, आई एम वर्दी ऑफ फ्रेंडशिप, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। तो चिड़िया जो थी वो नखरे दिखा रही थी एज यूजुअल। तो जो चिड़ा था उसने कहा, मैं तुम्हें सुलेमान का ताज ला के दूंगा। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो सुन लिया और समझ भी लिया कि जो मेल चिड़िया है उसने ये कहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत की जगह पर बैठे बैठे उस चिड़िया को इशारा किया कि जरा मेरे सामने हाजिर हो जाओ। अब जो मिस्टर चिड़ा थे वो कांपने लग गए, कांपते कांपते, कहानी है सही है फाइन, मुझे नहीं मालूम इसकी ऑथेंटिसिटी। जब कांपते कांपते सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आकर बैठ गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, व्हाट मेड यू से दिस, तुमने किस जुर्रत से ये बात कही कि तुम मेरा क्राउन ले जाकर अपनी शी चिड़िया फ्रेंड को दे दोगे। तो उसने कहा कि आपको नहीं मालूम, इंसान मोहब्बत में अपने लवर से जो भी कहता है उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो जैसे शायरी में नहीं कहते इंसानों में, आपको मैं आसमान के तारे तोड़ कर ला दूंगा, कभी किसी ने आसमान के तारे तोड़ कर ला के दिए, कभी भी ला के नहीं दिए। तो चिड़िया थी उसने बहुत ही सेंसिबल बात की, उसने कहा आपको नहीं मालूम है कि जब मोहब्बत में लवर से कोई बात की जाती है तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपने रब के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक होना चाहिए। क्या इस्लाम के साथ, अल्लाह के साथ, शरीयत के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए? हम समझते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप सिर्फ जो है ये हस्बैंड वाइफ के दरमियान में चलता है। अल्लाह करे हम इतना ही समझते हो, इससे मजीद ना समझते हो। जब आप रोमांटिक रिलेशनशिप को समझते हैं, मोहब्बत का एंगल अल्लाह के साथ मोमिनीन का इंटेंस होता है। वल्लदीना आमनु अशद हुब्ब लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत में इंटेंस होते हैं। तो आप और मैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं नो डाउट दोपहर के टाइम में। आई एम श्योर आप में से बहुत सी खवातीन, क्योंकि 21वां रमजान है, आप ऑलरेडी किसी रमजान के प्रोग्राम का हिस्सा हो भी सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ आई हैं अल्लाह की मोहब्बत में, मैं आई हूँ अल्लाह की मोहब्बत में, यह हमारा प्राइमरी कंसर्न है। हम यहाँ एक दूसरे की मोहब्बत में सेकेंडरी कंसर्न पर आ सकते हैं, हम यहाँ पर एक दूसरे के लिए सेकेंडरी मैटर पर बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी मैटर, फर्स्ट विजन ये है कि हम घरों से रोजे की हालत में आखिरी अशरे में निकल के जो आए हैं, इसमें हमारा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना है, ईमान को बढ़ाना है, इस्लाम की मोहब्बत हासिल करना है। इसलिए कि हमारा ईमान है कि जब ईमान और मोहब्बत बढ़ते हैं तो इंसान के लिए शरीयत के इफ्स एंड बट्स दूर होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपकी और मेरे लिए ये इफ्स एंड बट्स बहुत बड़े हो जाते हैं, बाज़ मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़े एक मैग्निफाइड फॉर्म में रहते हैं, जब तक कि यहाँ पर मोहब्बत का एंगल बढ़ ना जाए। इत्तेफाक से मैं जब भी इस घर में आई हूँ, रमज़ान का आखिरी अशरा ही हुआ है, और हर दफ़ा मैंने सोचा मैं इस मरतबा अपना आखिरी अशरा फ्री रखूंगी, लेकिन अल्लाह को अपना काम लेना होता है और अल्लाह ताला जो है वो फौजियों को मेरे गले से लटका देते हैं, उसके बाद फिर मुझसे इनकार नहीं होता है, फिर मैं अल्लाह का नाम लेकर यहाँ पहुँच जाती हूँ और आप सब भी माशाल्लाह आ जाते हैं। हमारा मेन फोकस, मैं अपने आप को सबसे पहले बता रही हूँ, मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मोहब्बत है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोहब्बत से आप लोग आते हैं और जिस मोहब्बत से फौजियाँ इन्वाइट करते हैं, हम इसी मकसद से इस अशरे में इस टाइम पर कुरान खोल कर बैठ रहे हैं। इमाम मालिक के लिए आता है, इमाम मालिक बहुत बड़े फ़कीह थे, इमाम मालिक पूरा स्कूल ऑफ थॉट इमाम मालिक के टीचिंग्स के साथ चलता है। इमाम मालिक के लिए आता है कि जब रमज़ान का महीना आया करता था तो इमाम मालिक अपनी फ़िक और हदीस की किताबें बंद कर दिया करते थे और कुरान खोल लिया करते थे, इसलिए कि रमज़ान कुरान का महीना है। रमज़ान का मकसद रोज़ा रखना नहीं है, रमज़ान का मकसद है मुसलमानों को कुरान से जोड़ना, मुसलमानों का कुरान से एक कनेक्शन नए तरीके से बिल्ड करना, मुसलमानों के दिल में कुरान की मोहब्बत को दोबारा से उजागर करना। हम जानते हैं कि कुरान के साथ सूरह बकरा की जो आयत आई है उसमें रमज़ान का जिक्र पहले नहीं किया गया, बल्कि कहा गया शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हम जानते हैं कि रमज़ान के महीने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान की दोहराई किया करते थे। जितना कुरान नाजिल हो चुका होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान जो था वो रिवाइज किया जाता था। और हम भी ये बात जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर कुरान के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करने की ख़ास कोशिश करते हैं। हम में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो डे वन से टारगेट करती हैं कि मैं अपने पारे में एक दिन आगे चलती रहूँगी ताकि मुझे टेंशन ना हो और मैं अपना कुरान मुकम्मल वक्त पर कर लूँ। मगर होता क्या है, जैसे जैसे रमज़ान गुजरना शुरू होते हैं मसरूफियात एकदम से बढ़ती हैं, रोज़े की एक्टिविटी आती है, तो होता क्या है कि वो पारे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, रोज़े आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब आखिरी अशरा आता है, जब 20वां रोज़ा आता है, तब एकदम से जो है वो अलार्म बेल बजना शुरू हो जाती है, हाय मेरे तो 15 पारे रहते हैं, हाय मेरे तो 12 पारे रहते हैं, हाय मेरे तो 20 पारे रहते हैं, और फिर हम अपने आप को टारगेट देते हैं। ये कुरान से मोहब्बत का मैनिफेस्टेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त आप में से किसी के 11 पारे हुए हैं, कोई हो सकता है कि आपने शुरू तो किया था पहली रमज़ान से, लेकिन मसरूफियत, तबीयत, ऑन एंड ऑफ आपकी रूटीन, आपके अभी इस वक्त 11 पारे हुए हैं। आज कौन सा रोज़ है? 21वां रोज़ है। क्या अभी भी हम टारगेट कर सकते हैं कि हम सही तजवीज़ से पढ़ेंगे और हम इंशाल्लाह 29वें तक अपना कुरान मुकम्मल कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका और मेरा काम है बीज डालना, याद रखिए, दरख्त उगाना हमारा काम नहीं है। आप बीज डालती हैं और फिर ज़मीन के ऊपर आप एफर्ट करती हैं। दरख्त उगाना किसका काम है? अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला दरख्त उगाता है, अल्लाह उसको ग्रो करता रहता है, हम उसकी नरिशमेंट के लिए जो सोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं हम करते हैं। फिर जो फल आता है वो आपकी और मेरी मेहनत से आता है या अल्लाह लेकर आता है? अल्लाह लेकर आता है। अगेन फिर आपकी और मेरी जिम्मेदारी होती है कि उस फल में से जो बीज निकले क्या करो उस बीज के साथ, जाओ दोबारा जाकर जमीन में लगा दो उसको। बस ये एक प्रोसेस है अब्द और खालिक के दरमियान में रिलेशनशिप का, और इसीलिए आप और मैं अपनी जिंदगी में कोशिश करेंगे, कितने भी आपके पारे रहते हैं आपने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि आप रमजान की 29वें तक सही तजवीद के साथ पढ़ें। ऐसे मत पढ़िएगा लगेंगे आप चने चबा रही हैं, कुरान पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि जैसे हर लफ्ज का हक अदा करते हुए पढ़ रहे हैं, और उसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश कीजिए। तरावी में खड़े होकर हम कुरान के साथ वक्त गुजारते हैं, हम यहां आकर कुरान के फहम को जो हासिल कर रहे हैं ये उसी रमजान के महीने के अंदर कुरान के एसेंस को लाने ही का एक मकसद है जो हम पूरे कर रहे हैं। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि शरीयत का एक अहम पर्पस रमजान का महीना देने से ये है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह का बंदा कुरान के साथ अपने आप को दोबारा से रिकनेक्ट कर ले। यकीनन आप अपने आप को जितना भी रिकनेक्ट कर चुकी इन 8 दिनों में कोशिश कीजिएगा कि आप रेगुलर रहें, ताकि एक सूरत के जरिए जो आपको फहम हासिल हो वो अगले रमजान तक आपको अमल की मोटिवेशन पर कायम रखे, वो अगले रमजान तक आपको अल्लाह के खौफ और मोहब्बत के ब्लेंड के साथ रखे, वो आपको इस नेमत की कदर करने वाला बनाए जो अल्लाह इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें दे रहा है। हमारा ईमान है कि जिस तरह अल्लाह ने अपने कलाम में अपने लिए जो बातें मेंशन की हैं वो अल्लाह से बेहतर कोई मेंशन नहीं कर सकता था, और अल्लाह के बाद अगर अल्लाह के कलाम को कोई बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है, नरेट कर सकता है, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिक्चर में से हटाकर कोई भी इंसान कुरान की किसी आयत की एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। अगर कोई अल्लाह के रसूल की तालीमात को हटाकर कुरान की एक्सप्लेनेशन करेगा तो वो कुरान के साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर सकता, उसकी एक्सप्लेनेशन फेल हो जाएगी। इसलिए इंशाल्लाह हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले कुरान, कुरान के अल्फाज, उसकी वोकैबुलरी से सूरह मुल्क को समझें, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में जहां जहां आपने जिन जिन बातों को मेंशन किया है उसकी रोशनी में हम इन आयात को समझें, और उसके बाद आसार सहाबा जहां जहां अल्लाह के रसूल के सहाबा ने इन आयात को अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है हम उसकी मदद से इंशाल्लाह इस सूरत की गहराई को अपने साथ ले जाने वाले बन जाएं। कुरान एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हकीकत है। कुरान एक हैवी वेटेज रखने वाला कलाम है। अल्लाह ताला ने एक गो में रसूल अल्लाह पर पूरा कुरान नाजिल नहीं किया, अल्लाह ताला ने 23 साल के अरसे में ग्रेजुअली इसको नाजिल किया है। तो कभी कभी इस कुरान का छोटा सा पार्ट वक्त लगाकर, सोच समझकर, पॉन्डर करके, गौर करके और बार बार घर जाकर भी उसके ऊपर तफक्कुर करके जब इसके साथ वक्त गुजारा जाता है ये दिल की गहराई में उतरता है, यह आपके और मेरे किरदार का हिस्सा बनता है। आपने कुरान में आयत पढ़ी है सूरह हशर की आयत नंबर 21 में आता है, लौ अनजलना हादल कुरान अला जबलिन, अगर अल्लाह ताला इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते, लराअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो आप देखते कि ये जो पहाड़ था ये अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से क्रम्बल कर जाता। ब्रेड क्रम्स देखे हैं ना, खाशिअन मुतसद्दिअन ब्रेड क्रम्स बन जाता। दिस इज द ईजीएस्ट ट्रांसलेशन जो आप खाशिअन मुतसद्दिअन की पहाड़ के लिए कर सकते हैं, रेजा रेजा हो जाता। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अल्लाह ने इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल करने के लिए इंसान का दिल सेलेक्ट किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इसको नाजिल किया गया, और उसके बाद उम्मत के हर शख्स के दिल पर इसको नाजिल किया जाता है। इसलिए इसमें दिलों की शिफा है, इसलिए इसके अंदर दिलों की हिदायत है। तो जब भी कुरान पढ़ें, जब भी कुरान सुने, जब भी कुरान की अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए आएं और बैठें, कुरान के जुमलों को अपने दिल पर गिरता हुआ महसूस करें, अपने दिल के अंदर जाता हुआ महसूस करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट हो, आप अपने आप को बिस्मिल्लाह करके घर के अंदर दाखिल करें, जैसे आप अपने घर से बिस्मिल्लाह ही तवक्कलतू कह के निकलती हैं, आप जब यहाँ भी आएं तो बिस्मिल्लाह करके बैठिए, ताकि आपके दिल के अंदर बिल्कुल प्योरिटी आ जाए और इखलास आ जाए कि आप अल्लाह की तालीम को किस तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। यह हमेशा से इस्लामिक ट्रेडिशन रहा है तालीम के सिलसिले में, कुरान की तालीम के सिलसिले में, कि स्कॉलर्स कुरान को हमेशा कैटेगराइज करते रहे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि समझने वाले के दिल में, तालिबिल्म के दिल में कुछ बुलेट पॉइंट्स रह जाएं,
کچھ چیزیں ایسی رہ جائیں کہ جو اس کو اس کی زندگی میں فائدہ دیں. اسی طرح سے بعض اسکالرز نے قرآن کو ٹوٹل پورے قرآن کو دو برانچز میں ڈیوائڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کی تعلیمات جس کو آپ شریعہ کہہ لیں یا آپ پوری قرآنک ٹیچنگز کہہ لیں وہ دو حصوں میں دو برانچز میں ڈیوائڈڈ ہیں. ایک برانچ ہے جو اس کی فاؤنڈیشن ہے, جو اس کی روٹ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں اصول الدین, جس کو اصول کہا جاتا ہے یا بعض اسکالرز اس کو اصول الدین کہتے ہیں, یعنی جو ایمانیات ہے, کیسے ایمان لایا جائے گا, کتنا ایمان لایا جائے گا, کس کس چیز پر ایمان لایا جائے گا اور کس کس طرح سے اس ایمان کی مینیفیسٹیشن زندگی میں کی جائے گی. یہ وہ تعلیمات کا پہلا حصہ ہے جو آپ کو قرآن کی تعلیمات میں ملتا ہے. دس از پارٹ ون, جس کے اندر آپ کو تمام ایمانیات ملتا ہے, جس کو آپ آج کی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں. عقیدے کی ٹرم قرآن میں نہیں ملتی, یہ عقیدے کی ٹرم ایمانیات کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے جو کہ اسکالرز نے سلیکٹ کی ہے. دوسرا سیکشن جو قرآن کی تعلیمات کا اسکالرز نے لیا ہے, یعنی انہوں نے پورے قرآن کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلا کیا ہے؟ پہلا حصہ جس کو اسکالرز نے کیٹیگرائزیشن میں قرآن کی تعلیم کا ایک بڑا چنک, ایک بڑی برانچ بنایا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گی؟ اصول یا اصول الدین. اس ٹرم سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یاد رہے گا. دوسرا بڑا حصہ, پورا چنک آف دا قرآن جو دوسرا چنک بنتا ہے, اس کو کہتے ہیں شریعہ لاس. سمپل, یعنی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کس چیز کی اجازت ہے, کس چیز کی اجازت نہیں ہے, کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے فرما برداری کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. یہ پورا چنک ہے شریعت کا, اور یہ شریعت کے لاس کا پورا چنک کھڑا ہوتا ہے پہلے حصے کے اوپر. وہ روٹس ہیں نا, اصول, پرنسپل, روٹس, جو ایمان ہے. جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا, یہ شریعہ لاس ماننے والا مائنڈ سیٹ آئے گا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گی, اگر آپ سٹڈی کریں اپنے کلاسیکل سکالرز کو یا آپ سٹڈی کریں ان علماء کو جو تعلیم کے اندر قرآن کا علم کرایا کرتے تھے, وہ پہلے مکی صورتیں پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو. اس لیے کہ مکی صورتوں میں یہ والا پارٹ کور ہو جاتا ہے جو پہلا پارٹ ہے, جس کے اندر اصول ہے, ایمانیات ہے. ایک دفعہ مجھے ایمان آ گیا کہ یہ کلمہ صرف زبان سے مجھے ادا نہیں کرنا ہوتا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ میری زندگی کی تصویر ہے. جس کے دل میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کی محبت آ گئی, جس کے دل میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی, اب وہ دل شریعہ لاس کو مانے گا اور ایفس اینڈ بٹس نہیں کرے گا. اگر آج ہمارے بچے, سیدھی سی بات ہے, اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں, اگر آج مسلمان امت, پڑھا لکھا انسان اسلام سے دور بھاگ رہا ہے, کیا مطلب ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں. دعویٰ ہو سکتا ہے زبان سے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں, یا میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ہو سکتا ہے زبان سے نکلتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام, لیکن وہ الفاظ ہی الفاظ ہوں, وہ دل کی گہرائی میں نہ اترا ہو. جس کے دل میں ایک دفعہ اللہ کی محبت اور ایمان کی طاقت آ جاتی ہے, وہ شریعہ لاس کو ماننے لگ جاتا ہے. سورہ ابراہیم کے اندر یہ بات بہت خوبصورتی سے بتائی گئی ہے کہ اگر دل میں ایمان کا بیج زندہ ہو جائے تو یہ برانچ آؤٹ ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے. ایمان برانچ آؤٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان پھیلتا کیسے ہے؟ عمل کے ذریعے. ایمان پھیلتا کیسے ہے؟ آپ کیسے بتائیں گی کہ آپ کو محبت ہے اپنی والدہ سے؟ آپ پورا ایک صفحہ لکھ کر لے آتی ہیں, پورا پرنٹ آؤٹ نکال کے لے آتی ہیں, اماں سے کہتی ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے اماں آئی لو یو, پورا پرنٹ آؤٹ اماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا. بٹ یہ جو آپ نے لکھا ہے, اس کا فیکچوئل جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے, وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب اماں آپ سے کہیں گی بیٹا ذرا میرے پاؤں تو دبا دو, تراویح میں کھڑے کھڑے پاؤں میں درد شروع ہو گیا. اب بچہ کہے گا لو میرا اپنا روزہ تھا, میرے خود پاؤں تھک رہے ہیں, اب آپ میرے بھی دبائیں پہلے. تو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کہاں چلی گئی؟ جس دل میں محبت ہوتی ہے, جس دل کی محبت دل میں اتری ہوئی ہوتی ہے, وہ محبت اپنے عمل میں نظر آتی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 یہ بتاتی ہے کہ جب ایمان دل میں آتا ہے وہ برانچ آؤٹ کرتا ہے. جب آپ کے اور میرے دل میں قرآن اترے گا, آپ میں سے بہت سے چہرے ایسے ہیں الحمدللہ جو سورہ رحمان میں میرے ساتھ ہے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ وہاں سے میرے پیچھے پیچھے آئے ہیں یا آپ لوگ ماشاء اللہ یہاں سے وہاں جا رہے تھے. اور بہت خوشی ہو رہی ہے, مجھے نہیں معلوم تھا بہت سے چہروں کے بارے میں کہ یہ چہرے جو ہیں مجھے یہاں بھی نظر آ جائیں گے. اللہ کی رحمت الحمدللہ. اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے بالکل شمع کے گرد پروانوں کی طرح ہوتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. اب تو آپ کو پروانے کم ہی نظر آتے ہیں بیکاز اب ہمارے پاس جو ہے وہ شمع بھی ویسی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے واقعی دیکھنا ہے وہ دل جو اللہ سے محبت کرتا ہے, وہ مومن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ کیسے اللہ کے کلام کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. کسی دن باہر رات میں کینڈل رکھ کے بیٹھ جائیں, آپ کہیں سینٹڈ کینڈل رکھوں کہ نارمل کینڈل رکھوں, کوئی بھی کینڈل رکھ لیں, کینڈل رکھ کے بیٹھے ہوں. خاص طور پہ وہ والا موسم جو کہ جون جولائی کا موسم ہوتا ہے, اس میں ذرا جو ہے وہ یہ موت وغیرہ پروانے باہر نکلتے ہیں. آپ دیکھیں پھر وہ کیسے اسی کے آس پاس طواف کرتا رہتا ہے, اسی کے گرد طواف کرتا رہتا ہے. یہ ہے محبت کی مینیفیسٹیشن. محبت دل میں ہو تو عمل میں آتی ہے. جن لوگوں نے 20 دن قرآن سنا ہے, ہو نہیں سکتا کہ ان کی نیکی کا عمل ایک قدم آگے نہ بڑھے. ہو نہیں سکتا کہ جیسے ہم شعبان کے مہینے میں نیک تھے, 20 دن قرآن سننے کے بعد بھی اس نیکی میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو. ممکن نہیں ہے. تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. ایک اچھے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت, طیب درخت, اصلہ ثابت, جس کی شاخیں آسمانوں تک جاتی ہیں, جس کی جڑیں زمین میں ڈیپ جاتی ہیں, وفرعہا فی السماء, اور اس کی شاخیں بلند آسمان پر جاتی ہیں. ایمان, وہ ایمان کا بیج, وہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں ڈیپلی روٹیڈ ہوتی ہیں. قرآن کی تعلیم کے 2 حصے, اصول مضبوط ہوتے ہیں, ایمان مکمل ہوتا ہے. وفرعہا فی السماء, شریعت کی مینیفیسٹیشن اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. دیکھیں ایمان نظر آتا ہے, درخت کی جڑیں آپ کو نظر آتی ہیں. اسی طرح سے ایمان تو دل میں ہے, کیسے پتہ چلے گا رب کو کہ آپ واقعی اللہ کے ایمان, اللہ کی محبت, اللہ کا دیا ہوا کانفیڈنس, اللہ کا دیا ہوا خوف دل میں رکھتے ہیں. آپ کی زندگی کا روز کا عمل اور چوائسز بتائیں گی کہ آپ کے دل میں اللہ کی دی ہوئی محبت کتنی ہے. امام بحقی نے اپنی کتاب کا نام یہی رکھا ہے, شعب الایمان. شعب الایمان کا مطلب کیا ہے؟ شین عین با, برانچز آف فیتھ. ایمان برانچ آؤٹ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں, آپ نے فرمایا, الایمان بدعن وسبعون او بدعن وستون شعبہ. ایمان برانچ آؤٹ کرتا ہے. آپ نے کہا یا ایمان کی 60 برانچز ہوتی ہیں یا ایمان کی 70 برانچز ہوتی ہیں. اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ افضل ترین ایمان کا لیول جو ہے, ایمان کا لیول وہ ہے لا الہ الا اللہ کو زندگی کی تصویر بنا لینا, اور ادنا ترین یہ ہے کہ کسی راستے کی جگہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. بغیر سوچے سمجھے ہٹایا, یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے اس کے بعد کتنا ریوارڈ ملے گا. یہ ادنا ترین ہے. لیکن پورا لا الہ الا اللہ زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے, یہ اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اسی میں آگے, والحیاء شعبتم من الایمان. ایمان کی ایک برانچ حیا ہے, اور حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہے, حیا سب کے لیے ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. حیا صرف آپ کی اور میری فزیکل اپیئرنس میں نہیں ہوتی. حیا کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے ہر عمل میں حیا ہوتی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں لحاظ والا انسان, جو ہر ایک کا خیال رکھتا ہے, اور جو اس کا خیال رکھتا ہے وہ اس کا دگنا خیال رکھتا ہے. یہ بھی حیا ہی کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. تو یہ 2 مختلف کیٹیگرائزیشن آپ کو قرآن کی آیات کی ملتی ہیں جو اسکالرز جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کیٹیگرائزیشن آپ کو ملتی ہیں قرآن میں ڈیوائڈ کی ہوئی مکی اور مدنی قرآن میں. مکی قرآن سارے کا سارا اصول پر ہے, اور مدنی قرآن سارے کا سارا شریعہ لاس کے اوپر ہے, کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرے گا. اگر آپ کوانٹٹی وائز دیکھیں تو سورتوں کے نمبر میں مکی قرآن زیادہ ہے. 13 سال کے عرصے میں جو زیادہ سے زیادہ سورتیں نمبر وائز آئی ہیں, اس میں مکی قرآن زیادہ آیا ہے. مکی قرآن میں ساؤنڈ, ردھم, ایک امپیکٹ آپ کو بہت پاورفل ملتا ہے. اس میں ڈرلنگ امپیکٹ ہے. جہاں سودنگ امپیکٹ ہے مکی قرآن میں, وہاں مکی قرآن آپ کے دل کے اندر ایور لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑ جاتا ہے. اسی لیے جب قریش, ایک ٹائم گزرا 4-5 سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو, تو قریش جب بھی کوئی نیا قبیلہ آیا کرتا تھا حرم جانے کے لیے, یا حرم کے طواف کے لیے, یا حج کے لیے, تو قریش پہلے سے ہی قبیلے کے لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ اپنے کانوں میں کاٹن پلگ لگا لو, اور تم سننا نہیں جو محمد نام کا شخص کہے گا. इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बाहर से इस तरह से डेलीगेशन आता था तवाफ करने के लिए या वो हरम के विजिट के लिए या वो हज के लिए, तो वो सबसे पहले जब हरम आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकात करके उनको कुरान की आयतें सुनाया करते थे। तो जैसे ही ये कुरैश के लोगों को पता चलता था कोई नया डेलीगेशन आ रहा है, ये पहले से कह दिया करते थे कि देखो मोहम्मद की बात नहीं सुनना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अल्फाज में जादू है और वो ब्रेन वॉश कर देता है। इसीलिए वो पहले से लोगों को वार्न कर दिया करते थे। ये वो वक्त था जिसमें सूरह मुल्क नाजिल हुई है, मक्की दौर का वो एसेंस टाइम, मक्की दौर का वो प्राइम टाइम, जिसके अंदर कुरैश इस बात को तो महसूस कर गए थे कि अल्लाह के इस कलाम में, जिसको वो अल्लाह का कलाम नहीं कहते थे, वो कहते थे इस कलाम में कोई मैजिकल पावर जरूर है, इसलिए कि ये चलते चलते भी अगर कान पर पड़ जाता है तो सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको और मुझे अरबी जुबान समझ नहीं आती ना, इसलिए शायद हम सोचते नहीं हैं। हम तरावी में खड़े होकर एक पारा सवा पारा सुनते रहते हैं और फिर हमें यौन आती रहती है। हम कहते हैं प्लीज कुरान खोल लें बता दें, इसलिए कि हम तो सो ही जाते हैं, खड़े खड़े ही सो जाते हैं। क्यों हमें समझ नहीं आता? ये हमारा मसला है। कुरैश को समझ आता था। अबू सुफियान जब मुसलमान हो गए, वो खुद बताते हैं मुसलमान होने के बाद अपना वाकया कि मक्का में जब चांदनी रातें नहीं होती थी, फुल मून नहीं होता था जिसमें चांद की रोशनी नहीं होती थी, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े होकर आपकी रात में कुरान की तिलावत सुना करते थे। दिल पर असर करता था। इसी तरह आपको हदीस और नरेशन मिलते जिससे पता चलता है कि एक मरतबा अबू सुफियान को दूसरी दीवार के साथ अबू जहल मिल गया, वो स्नीक करके वो भी कुरान सुन रहा था। हलावत थी ना। तो जब एक दूसरे से दोनों ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो अबू जहल ने कहा वल्लाही इन्ना कलामहु लहू हलावतुन, यकीनन इस कलाम के अंदर हलावत है, मोहब्बत है, इस कलाम के अंदर गहराई महसूस होती है। तो ये वो कलाम था जिसके अंदर ऑटोमेटिक इस्लाह का फैक्टर है, जो दिल में उतरता है, जो दिल में अल्लाह की मोहब्बत को जगाता है। अगर कुरैश को नहीं जगा सका तो उनके दिल में तकब्बुर था, और अगर हमें नहीं जगाता है तो हमारे यहाँ गफलत के और जहालत के सिर्फ पर्दे हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हम अरबी जुबान को समझ नहीं पाते हैं। आप देखें यही दो फैक्टर्स जो उसूल और शरीयत के हैं। कुरान में सबसे ज्यादा जिन दो अंबिया को मेंशन किया गया है, ये खूबसूरती के साथ दोनों एंगल उनसे कनेक्ट होते हैं। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बहुत जिक्र किया गया है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात में आपको उसूल मिलेगा, ईमानियात मिलेंगे। ईमान लाओ, देखो आसपास की कायनात को और सोचो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ पैदा किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात को जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया तो कुरान में आता है वमई यब यत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कौन है जो मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करे जो कि कंप्लीटली ईमान पर बेस्ड थी, यकसू फ्री ऑफ शिर्क हनीफन, बिल्कुल कम्प्लीटली अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस करने वाले। और मूसा अलैहि सलाम दूसरे नबी हैं जिनका जिक्र आपको कुरान में मिलता है, जिनको शरिया लॉज